अयान साक्षी को मनाने के लिए उसके घर पर आया हुआ था। साक्षी पहले उससे नाराज थी, लेकिन अयान के प्यार से बात करने के बाद वो मान गई थी। साक्षी की नाराज़गी दूर तो हो गई थी, लेकिन वो अयान को सच बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसने देखा, अयान उसको खुश रखने की हर संभव कोशिश कर रहा था। ये देखकर साक्षी का दिल पसीज गया और वो अयान को सब सच बताने के लिए तैयार हो गई। ये अयान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन दोनों का लंच खत्म हुआ तो उसके बाद वो दोनों साथ में बालकनी एरिया में बैठे हुए थे। शाम होने की वजह से मौसम काफ़ी खुशनुमा था। वहां आते ही अयान ने साक्षी का हाथ अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, अभी भी कह रहा हूं साक्षी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं या अपने पास्ट की बात करने के बाद उन सब लम्हों को आपको फिर से महसूस करना होगा तो आप मत बताइए। कोई भी चीज़ आपकी खुशी से बढ़कर नहीं हो सकती। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बोलते हुए उसने साक्षी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से सहला रहा था। साक्षी अयान से अलग हुई और मायूसी से बोली, लेकिन तुम्हारा हक बनता है। आई होप पूरा सच जानने के बाद तुम मुझे बाकी लोगों की तरह जज नहीं करोगे। साक्षी ने आगे बताने से पहले गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद को मजबूत करने की कोशिश करने लगी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरी बेटी के बारे में तो जानते हो, जरूर आरफ ने बताया होगा। हाँ भाई ने ही बताया था, पर इस बात के लिए आप उनसे नाराज मत होना। क्या आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया था या आपके बॉयफ्रेंड? बोलते हुए अयान रुक गया। वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे साक्षी के दिल को ठेस पहुंचे। साक्षी ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं नहीं जानती मेरी बेटी का बाप कौन है। मैंने उसे कभी बेटी की तरह पाला ही नहीं, मेरी मॉम ही उसकी देखरेख करती हैं। साक्षी ने जब सब बताया तो अयान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। आगे कुछ पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तभी साक्षी ने बताया, तुम्हें पता होगा मेरी और आरफ की एजुकेशन लंदन में हुई थी। हम दोनों हाई स्कूल से ही साथ थे। कॉलेज टाइम में एक पार्टी के वक्त किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। वो इंडियन नहीं थे और शायद चार लोग थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो साक्षी आगे कुछ नहीं बताई और रोने लगी। अयान भी सब समझ गया था। उसने साक्षी को अपने सीने से लगाया और सहलाते हुए कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है साक्षी, आप क्यों खुद को ब्लेम कर रही हैं? कोई आपको जज कर भी कैसे सकता है, जबकि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं थी। इतने साल तक ये सब सहने की क्या जरूरत थी? साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोए जा रही थी। अयान को उसके दर्द का एहसास अच्छे से हो रहा था और साथ ही ये भी समझ आ रहा था कि अब तक साक्षी ने उसे सच क्यों नहीं बताया। साक्षी सुबकते हुए बोली, आरफ सब जानता था, क्योंकि उसी ने अगली सुबह मुझे ढूंढकर वहां से निकाला था। मैं उस बच्ची से नफरत नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उसे देखती हूँ तो मुझे सब कुछ याद आ जाता है। जानती हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी क्या गलती थी जो उन्होंने मेरे साथ वो सब किया? साक्षी रोते हुए अपना दर्द बयां कर रही थी। अयान और साक्षी बालकनी में बातें कर रहे थे, इसलिए उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मंथन भी वहां पहुंच चुका है। वो बालकनी से बाहर दीवार से लगकर उनकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखें नम थीं और गुस्से में मुठ्ठियां बंधी हुई थीं। मंथन ने अपने मन में कहा, पिछले 7 सालों में पहली बार दी ने इस बारे में किसी से बात की है। चलो उनके दिल का दर्द बाहर तो आया, वरना इस मामले को लेकर वो कभी कुछ नहीं बोली थी। टियारा की इन सब में कोई गलती नहीं है, पर टियारा दी के जख्मों का वो निशान है जिसे वो चाहकर भी नहीं छुपा सकती। साक्षी की बेटी का नाम टियारा था। उसे साक्षी की मॉम ने ही पाला था। उसके अलावा घर के बाकी लोग उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, यहां तक कि साक्षी खुद भी नहीं। मंथन साक्षी के पास बढ़ने को हुआ, तभी उसके कानों में अयान की आवाज सुनाई दी। उसने साक्षी को चुप कराते हुए कहा, चलिए आपने अब मुझे सब बता दिया है तो इसके बारे में हम कभी जिक्र भी नहीं करेंगे, और आप भी तभी सोचकर परेशान नहीं होंगी। जो हो चुका है उस पर हमारा बस नहीं चला था, लेकिन हमारा फ्यूचर और खुशियां हमारे हाथ में हैं। आपको शादी के लिए टाइम चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मुझे इन सबसे जरा सा भी फर्क पड़ा होगा। साक्षी ने उसकी बात पर हामी भरी। दिल ही दिल में उसे भी तसल्ली हो रही थी कि अयान काफी सुलझा हुआ लड़का है। बाहर वही मंथन भी अयान की बातें सुनकर खुश था। इतने सालों में पहली बार किसी ने साक्षी को समझा था, वरना आज से पहले उसके घर वालों ने जब भी साक्षी की शादी करवानी चाही तो वो उसके पास्ट को जानने के बाद उससे शादी के लिए इनकार कर देते थे। साक्षी का ध्यान भटकाने के लिए अयान ने कहा, अच्छा साक्षी, डिनर के लिए कहीं बाहर चले? आई नो आप सोचेंगे कि मुझे कितनी ज्यादा भूख लगती है। अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था और अब वापस खाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आपके साथ घूमने का बहुत मन कर रहा है। दूर किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चलते हैं जहां ज्यादा भीड़ ना हो, फिर तारों को देखते हुए वॉक करेंगे एक दूसरे का हाथ पकड़कर। ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। साक्षी समझ गई थी कि अयान ऐसा क्यों कह रहा है। उसने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। मंथन को लगने लगा कि अब वो बैल्कनी से बाहर आएंगे, तो वो तुरंत वहां से तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आ गया। दूसरी तरफ दोपहर से शाम हो चुकी थी। आरव अब तक सोया हुआ था। उसकी सारी रिपोर्ट्स आयो के हाथ में थी और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी। आयु की रिपोर्ट नॉर्मल देखने के बाद आयु के दिल को थोड़ी तो तसल्ली मिली, हालांकि फैज को लेकर वो अभी तक परेशान थी। काफी देर सोने के बाद आरव की नींद खुली तो उसने देखा आयु उसके पास बैठी हुई है। आयु के परेशान चेहरे को देखकर आरव को समझने देर नहीं लगी। उसने धीरे से कहा, मुझे होश आ गया है और मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी क्यों है? बस ऐसे ही, मैं तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, आयु ने बात को टालते हुए कहा। फैज से मिलने के बाद उसके दिल का डर बहुत बढ़ गया था, तो उसने आरव की तरफ देखकर परेशान लहजे में पूछा, आरव चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे अकेले मत छोड़ना। अब तक तुमने मेरी सारी गलतियों को इग्नोर किया है, तो आगे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मेरा हाथ मत छोड़ना। आरव ने उसकी बात पर हां में सिर हिलाया और अपने पास आने का इशारा किया। आरव अभी ठीक से बैठ नहीं सकता था, तो आयु उसके पास आकर लेट गई। उसका सिर आरव के सीने पर था, जिसे वो धीरे से सहला रहा था। दोनों बिल्कुल चुप थे। अचानक आरव ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तो तुम फिर उससे मिलकर आई थी? मैंने तुम्हें मना किया था कि उसके पास नहीं जाना है, फिर भी तुम नहीं सुनती हो और फिर बोलती हो कि मेरी गलतियों को इग्नोर कर देना। तुम्हारे चेहरे का डर साफ बता रहा है कि वो ठीक हो रहा है मिसेस खुराना। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, सो डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। मेरे होते हुए तुम्हें फैज खान जैसे इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। आरव की बात सुनकर आयु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने आरव को कुछ बताया भी नहीं था और उसे सब पता चल गया था। आयु आरव की बात का कुछ जवाब देती, उससे पहले उसे फिर से सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था और धुंधला दिखाई देने लगा। आयु जान गई थी कि अब वो बेहोश होने वाली है, इसलिए आयु ने अपनी आंखें बंद की और आरव के सीने पर सिर रख लिया। दोनों बिल्कुल चुप थे। अचानक आरव ने चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, तो तुम फिर उससे मिलकर आई थी? मैंने तुम्हें मना किया था कि उसके पास नहीं जाना है, फिर भी तुम नहीं सुनती हो और फिर बोलती हो कि मेरी गलतियों को इग्नोर कर देना। तुम्हारे चेहरे का डर साफ बता रहा है कि वो ठीक हो रहा है मिसेस खुराना। मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ, सो डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। मेरे होते हुए तुम्हें फैज खान जैसे इंसान से डरने की जरूरत नहीं है।
आरव से बात करते वक्त आयु ने महसूस किया कि उसे फिर से चक्कर आ रहे थे और अजीब फील हो रहा था। वो आरव के सामने अपनी हेल्थ इश्यूज जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, तू मुझे बाद में डांट लेना, अभी मुझे ऐसे ही कुछ देर सोना है। तुम्हारे पास आकर मुझे सुकून मिल रहा है आरव, तो प्लीज कुछ देर कुछ मत बोलो एंड लेट मी स्लीप। आयु ने सोने का बहाना बनाया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गई थी। आरव ने महसूस किया कि आयु कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसने आईज रोल करके कहा, ये सही है इसका, पहले गलती करो और फिर बाद में कुछ कहो तो इसे सोना होता है। इतनी जल्दी सो भी गई। लगभग 40 मिनट तक आयु वहीं आरव के सीने पर सर रखकर लेटी रही। जब उसे होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आरव की तरफ देखा। वो आयु के चेहरे को ही देख रहा था। आयु ने आरव को देखकर धीमी आवाज में पूछा, मैं कितनी देर से सो रही थी? एग्जैक्टली 42 मिनट्स। आरव ने भौंए उठाकर जवाब दिया। उसने आयु के चेहरे की तरफ देखा तो वो काफी थकी हुई लग रही थी। आरव ने आयु के बालों को सहलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब तुम मेरी टेंशन मत लो और डोंट वरी, तुमने जो किया है उसके लिए डांटने वाला नहीं हूँ। तुम जानबूझकर उसके सामने नहीं गई होगी, पर आगे से ध्यान रखना, खुद का ख्याल रखो मिसेस खुराना। काफी वीक लग रही हो, एक्सीडेंट मेरा हुआ है और बीमार तुम नजर आ रही हो। आयु ने हल्का मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी और आरव के पास से खड़ी हो गई। उसने फिर आरव से कहा, मैं नर्स को खाना देकर भेज रही हूँ, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, मुझे आने में टाइम लग सकता है। आरव ने आयु की बात पर हाँ में सिर हिलाया। आयु वहाँ से चली गई। तब आरव ने धीरे से कहा, मुझे इस हालत में छोड़कर पेशेंट अटेंड करने तो नहीं जाएगी, फिर इसे आने में टाइम क्यों लग रहा है? ज़रूर खुद का चेकअप करवाने जा रही होगी और मुझे बता नहीं रही। लगता है मुझे ही अयान से बात करनी ही पड़ेगी, अगर यही चलता रहा तो इसे खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाएगी। आरव आयु के आने का इंतज़ार करने लगा। वहीं आयु जैसे ही आरव के रूम से निकली, वो दौड़कर बाथरूम में गई। उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। आयु ने फिर एक नज़र आईने में खुद की तरफ देखा और घबराहट के साथ कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से बिना मेडिकेशन के मैं वीकनेस की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, वरना इतना जल्दी नहीं। अब मैं ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आयु बाथरूम से बाहर आई और तुरंत वहाँ की गायनिक डॉक्टर के पास चली गई। उसने अपनी हेल्थ कंडीशन अपने कलीग डॉक्टर को बताई। डॉक्टर को सब कुछ बताने के बाद आयु ने कहा, डॉक्टर मानसी, मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ, इसलिए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ आयु, तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो। थोड़े दिनों पहले तुम्हारे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से भी ये सब हो सकता है। और तुम खुद डॉक्टर हो, खुद भी तो टेस्ट कर सकती हो, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, डॉक्टर मानसी ने सिर हिलाकर कहा। उसकी बात का जवाब देने से पहले आयु ने कुछ पल सोचा और फिर उदास चेहरे के साथ कहा, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं खुद टेस्ट करती और वो नेगेटिव आता तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। टेस्ट करने के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हो तभी तो मुझे जवाब देना, वरना मैं खुद समझ जाऊंगी। पहले ये बताओ तुम क्या चाहती हो, डॉक्टर मानसी ने सीधे सीधे पूछा। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मुझे ये खुशी नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ तो पहले से ही अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में जानती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मेडिकल कंडीशन के चलते मैं कभी कंसीव कर भी पाऊंगी या नहीं, पर पिछले दिनों मेरी हालत देखते हुए मुझे फील हो रहा है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये प्रेग्नेंसी मेरे लिए एक रिस्क भी हो सकता है, पर मैं हर रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अब जो करना है वो तुम ही करो। आयु ने अपने दिल की बात मानसी को बता दी थी। उसे अपनी हेल्थ इश्यूज देखकर ये डाउट हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। मानसी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और आयु का हाथ सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए तो इट विल बी अ गुड न्यूज, और अगर नेगेटिव भी आए तो हम तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। चलो मेरे साथ आओ, मैं कुछ टेस्ट करती हूँ। मानसी ने आयु का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ लेकर गई। उसका ब्लड लेने के बाद उसने कुछ और टेस्ट भी किया और फिर आयु से कहा, 15 मिनट में कॉल करती हूँ, तब तक खुद को थोड़ा रिलैक्स कर लो। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से जाने लगी। जाते हुए उसके कदम अचानक रुक गए और उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, मानसी, मेरे अलावा रिपोर्ट के बारे में किसी को मत बताना। रिजल्ट चाहे जो भी हो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ओके, आई प्रॉमिस, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। पर अब तुम स्ट्रेस लेना बंद करो, किसी भी हालत में तुम्हारे लिए स्ट्रेस लेना सही नहीं है, मानसी ने आयु को समझाया। आयु ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चली गई। इस वक्त उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही थी।